देवियों सज्जनों, हम जो दूसरे देश में रहते हैं, हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ एक खास तरह की डिलेमा होती है। ये कि हम दो दो अलग अलग कल्चरों में हैं, ये कल्चर जो हमने जीवन भर सीखा जाना, ये कल्चर जहां हम रह रहे हैं, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। अगर यहां के कल्चर अपनाते हैं तो गिल्टी फीलिंग होती है कि हमने जो हमारी अपनी कल्चर के साथ हमने कंप्रोमाइज किया। अगर उसको अपने देशी संस्कृति को बनाए रखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि समाज में अलग थलग पड़ गए हैं। अगर हम अलग अलग संस्कृति को ठीक से समझ पाए तो ये समस्याएं ना हमारे लिए ना बच्चों के लिए ज्यादा होती है। तो थोड़ी सी चर्चा आज इस पर रखेंगे, कल्चर ईस्ट एंड वेस्ट, जिसे हम संस्कृति कहते हैं अपनी हिंदी में, अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, भारतीय संस्कृति वगैरह वगैरह। बेसिकली आप उसी को हम संस्कृति या कल्चर कहते हैं, जो वे ऑफ लाइफ है, और एक खास इकोलॉजी में जो इवॉल्व होता है, एक खास सोसाइटी में जो हमारे जीवन की जीने की तरीका है। अब जब आप जीवन की तरीका कहते हैं, उसमें आपके सोने से लेकर उठने से लेकर खाना पीना पढ़ना लिखना बोलना समझना बातें करना सब कुछ आता है। और ज्यादातर जिसको हम संस्कृति या कल्चर कहते हैं, वो कल्चर के नाम पर प्रचारित होता है। बेसिकली वो हमारा फैमिली ट्रेडिशन, जिस एरिया से हम आते हैं वहां से इसी तरह के ट्रेडिशन से हम पले बढ़े हैं। तो कल्चर में ट्रेडिशन कस्टम सब कुछ मिला हुआ होता है। और बहुत सारे मिसपरसेप्शन भी चलता है अपने कल्चर के नाम पर, जैसे मैं आपको पिछले बार एक उदाहरण दे रहा था। मेरे पास एक आंध्रा के परिवार आए, उनके दो बच्चे हैं, एक जॉब करता है और एक अभी लड़की जो अभी पढ़ाई पूरी कर चुकी है, कनाडा और अमेरिका में ज्यादातर जीवन बिताया, बच्चा यहीं पैदा हुआ यहीं पढ़े। अब कॉलेज में गया जॉब करने लगा तो उसके साथी उसको पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, शादी कब होगी। तो उसने कहा कि हमारे कल्चर में ये सब नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है, मां बाप चुनते हैं, फिर जहां चुनते हैं वहां शादी होती है, ज्योतिष को दिखाते हैं ग्रह मिलना चाहिए नक्षत्र मिलना चाहिए। तो उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं, तो आदमी हो इंसान हो तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, तुम्हें ब्याहना है लड़का लड़का जिससे भी जो भी हो, तुम्हारे मां बाप का दखल है। तो उसको डिप्रेशन हो गया, बार बार इस तरह के अपने फ्रेंड्स के टोंट सुन सुन करके। मां बाप को पूछा ये तो मां बाप का क्या धरा है, तो क्या समझाए। तो मुझे पूछा, मैंने उनसे यही कहा कि कौन से धर्म में आप जिसको अपना धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति में, किसने बताया आपको, कहां ये लिखा हुआ आपको मिला, कौन सी हिस्ट्री में पढ़ा, कौन से पुराण में पढ़ा, कौन से पुस्तक में पढ़ा, किसने बताया आपको कि हमारी संस्कृति में हमारे धर्म में ये सिस्टम है कि मां बाप ही चुनते हैं, बच्चे को चुनने का अधिकार नहीं है, और ज्योतिषी को दिखा के जातक मिलाते हैं तभी होता है। आप अपने बच्चे को गलत सीख दे रखे हो बचपन से, ये कोई कल्चर नहीं है, ना रिलीजन का पार्ट है। कुछ लोग मानते हैं फैमिली ट्रेडिशन है, इस तरह के ट्रेडिशन चलता आया है। अगर सचमुच आपको कल्चर समझना है तो ये समझना होगा कि कहां से शुरू हुई है। अगर आप मानते हो कि भारत के कल्चर वेद उपनिषद से भी शुरू हुआ है तो ऐसा तो कभी हमें शास्त्रों में मिलता नहीं है। ऋग्वेद में मंत्र आता है कि कुछ लड़कियां, लड़कियों के बारे में, अपनी पसंद से अपने गुण धर्म मिलते हुए लड़कों को पसंद करके शादी करते हैं। कुछ लड़कियां बहुत सारे लड़कों को देख करके चुन के शादी करते हैं। हमारे प्राचीन काल में जो आप पुराण पढ़ते हैं तो सब तो स्वयंवर था। स्वयंवर का मतलब होता है लड़की जाती थी, स्वयं मतलब सेल्फ, वरण मतलब चूजिंग, वो चूज करती थी। लड़के लाइन लगा के खड़े होते थे। आप उस कल्चर के हो जहां लड़कियों को आज लाइन लगानी पड़ती है, एक लड़का उसमें से चुनता है, पर आप उस कल्चर के हो जहां लड़के लाइन लगाते थे, लड़कियां चुनती थी। कोई बुरे अच्छे की बात नहीं है, स्वयंवर था, खुद चुनते थे, या पिता माता उनके लिए लड़कों को बुलाकर लाते थे, उनको चुना जाता था, या कहीं कहीं पिता माता खुद चुनते थे, बच्चों की सहमति लेकर करते थे। हर तरह का ऑप्शन हमारे पास था। अरे जातक मिलान तो कभी भी नहीं था, ये तो मुश्किल से 1200 साल की हिस्ट्री है। और मुझे आज तक नहीं समझ में आया जिन्होंने जंत्री मिला के, जातक जो भी मिला के, अपनी जन्म पत्री मिला के शादी किया, उनके घर में उतनी ही लड़ाइयां होती है। जिन्होंने नहीं किया उनके घर में भी उतनी लड़ाइयां होती है। उनके वहां इतने ही सेपरेशन होता है, जिन्होंने नहीं मिलाया उनके घर में भी उतने ही सेपरेशन होता है। सिर्फ ज्योतिष के नाम पर लाखों लोगों को पेट पलवाने के अलावा और तो कुछ नहीं है। तो आप अपने बचपन से अपने बच्चे को उठपटांग सीख दिलाया भारतीय संस्कृति के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। उसके अंदर ये पढ़ा लिखा लड़का अमेरिका में पैदा होकर के पढ़ने लिखने के बाद भी आपने उसको इंडिपेंडेंट सोचने की मौका नहीं दिया, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा, डिप्रेशन में होगा, दवाई खा के जिएगा। ये आपकी करतूत है, क्योंकि आप वो बड़ा हो गया है, आप बुजुर्ग हो गए, आप सॉरी कहने लायक अब नहीं हो। कि कैसे कहूं, जिंदगी भर जो किया कि भाई हम मां बाप के नाते गलत किया, या मानोगे नहीं? अब मेरे से पूछोगे मैं बोला तो फिर दूसरा कोई पंडित ढूंढोगे जो आपकी बात को सही साबित करे। बेटे को कहोगे देखो जी हमारा सही है, पर प्रॉब्लम है कि आपका बेटा तो जिंदगी भर इसी डिप्रेशन में जिएगा ही। ये जो कल्चरल डिलेमा है, मां बाप एक खास तरह के ट्रेडिशन को कल्चर के नाम पर अपने बच्चों तक फैलाते हैं और बच्चा मानने को तैयार नहीं, वो एक दूसरे कल्चर में पलता है। तो इसीलिए ये समझनी बड़ी जरूरी है। और जिसको हम संस्कृति कहते हैं वो बहुत सारी चीजों की मिलावट है। उसमें परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसमें फैमिली कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसमें कुछ हमारे प्राचीन काल से शास्त्रों के द्वारा बताए गए चीजों की अनइंटरप्टेड फ्लो है, एक अबाधित प्रवाह जो चलता आ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजों का मिलावट है और कुछ चीजें जगह और समय के हिसाब से बदलने वाली चीजें हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं छुट्टियों में वॉलंटियर का काम करता था, हर छुट्टी में, कभी घर में नहीं रहता था, तो हम संस्कृत प्रचार के लिए जाते थे स्कूल, कॉलेज, पार्क में, ऑफिस में, लोगों को कन्विंस करते थे। तो उनको 10 दिन का 15 दिन का कैंप लगाते थे कि संस्कृत बोलना सीखो। तो एक बार ऑफिस में एक गया, कोई योगा नेचुरोपैथी का सेंटर था, वहां बच्चे डॉक्टर बनते थे, योगा नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनते थे। तो मैंने उनको प्रिंसिपल से लेडी हुए बात कर रहा था, उनको समझा रहा था, संस्कृत में बोलता था। तो उनके बगल में अकाउंटेंट बैठा था, उन्हीं के ऑफिस में ही, उसी के साथ। बड़े बुजुर्ग थे, बड़े दाढ़ी मूंछ रखे थे, बाबा जैसे लगते थे, धोती कुर्ता पहन के बैठे थे। तो मुझे घूर रहे थे, एक्चुअली मैंने पेंट शर्ट पहना था। 10-15 मिनट 20 मिनट की चर्चा के बाद तो उन्होंने मुझे, बड़े गुस्से में, शायद उनके अंदर आग जल रहा था कि ये संस्कृत में बोल रहा है पर पेंट शर्ट पहन के बोल रहा है। तो उनको संस्कृत कम अच्छा लग रहा था, पेंट शर्ट ज्यादा बुरा लग रहा था। तो आधे घंटे के बाद उनका वो गुस्सा उबल पड़ा, बोले कैसा लड़का हो, कौन सा संस्कृत प्रचार करता है, तेरे में कोई संस्कृति नहीं है, तू टाप पर बोलने लग गया, पैंट शर्ट पहन के बैठा। उन्होंने सारी भड़ास जो 20 मिनट में उनके अंदर रहता आ रहा था तो खत्म हो गया। तो मैंने उनको पूछा, तो मतलब आप पूरी संस्कृति पालते हैं, ये जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ये कब से भारतीय संस्कृति हुई? मैंने उनसे पूछा उसी प्रिंसिपल के सामने, हमारे भारतीय संस्कृति में तो जमीन पर बैठने की परंपरा रही है, ये जो पंखा लगा करके हवा लेते हो ये कब भारतीय संस्कृति रही? जिस टेबल पर बैठ के लिखते हो ये कब से भारतीय संस्कृति बन गई? जिस कुर्ता तुम पहन रखे हो ये कुर्ता तो मुसलमानों की पहन है, अरबियन कल्चर से आया है, हमारे यहां तो कुर्ता की व्यवस्था नहीं, पेड़ के छाल पहनते थे। धीरे धीरे अनकटिंग कपड़े, जो कपड़े का आविष्कार हुआ तो बिना सिलाया कपड़े पहनते थे। आज भी आप साउथ में जाएंगे जो पक्के इंडियन कल्चर को समझते, मंदिर में जाएंगे वहां आपको अलाउ नहीं करते कि आप कुर्ता पहन के जा सके, बनियान पहन के जा सके, या तो आप धोती पहनेंगे और एक ऊपर चद्दर डालेंगे जिसमें सिला कोई चीज सिलाया गया ना हो। कुर्ता भी कब से इंडियन कल्चर में आ गया? मैंने उनसे पूछा, बोले कितना बदतमीज है, देखो यही सब सीखे। मैंने कहा अगर तुम आपसे छोटा उम्र में छोटा बोले तो ये कल्चर खराब है, अगर बड़ा आदमी बोले तो वो सही कल्चर है। ये हम सबके जहन में होता है। बच्चा अगर पेरेंट्स से, टीचर से सवाल पूछता है तो लगता है ये तो कल्चरली बहुत खराब है, बड़ा बैड मैनर है। बड़ा झूठ में तो कुछ भी बोले, वो कल्चर रेस्पेक्ट करना। तो जो कल्चर की संस्कृति के नाम पर हम बहुत सारे या तो मिसपरसेप्शन पालते हैं या और बहुत सारे अपनी सेल्फिशनेस को जस्टिफाई करने के लिए, खासकर अपने बच्चों के साथ, हम उसको कल्चर का नाम देते हैं। बड़े बूढ़े गुस्सा करे, नाराज हो, उठपटांग बोले, उसको सुनना, 100% सर झुका के सुनना, ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। और बच्चा अगर जब सवाल पूछे तो वो फिर अपसंस्कृति हो जाती है। ये कुसंस्कृति कहां से मिली, कहां लिखी हुई मिली, किसने बताया, सिवाय आपकी सेल्फिशनेस को सेटिस्फेक्शन देने के, कहां से मिला है? यही कपड़ा आपकी कल्चर का है, ये कहां से आपको पता चला? मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि धोती कुर्ता कोई इंडियन कल्चर नहीं है, समझनी चाहिए कल्चर बदलती है। 5000 साल पहले कपड़े नहीं थे तो लोग बलकल पहनते थे, कपड़े बने तो ऐसे कपड़े बने जिसको लपेटना होता था, ऐसा नहीं कि किसी भारत में पहनते थे। आज अफ्रीका में भी इसी तरह के जो अनसिविलाइज्ड नेशन है वहां भी ऐसे ही पहनते हैं, बिना सिलसिलाए वाले ऐसे करने वाले। धीरे धीरे हर चीज में टेक्नोलॉजी पनपने लगी, मशीन आने लगी, हर चीज बनने लगे, तो डिजाइन आने लगे, फिर हम थोड़े बहुत मॉडिफाई करके अपने इकोलॉजी के हिसाब से चेंज करने लगे। यूरोप में भी काम करने वाले लोग मैं जींस में कन्वर्ट हुआ। कहने का भाव यह है, अगर आप समझते हो कि ये चीज क्या है, कैसे बना, कहां से आया, फिर आप किसी पर अंगुली नहीं उठाओगे। अगर उठाओगे तो खुद पर उठाओगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है। दूसरों पर अंगुली उठाने के लिए आपके हाथ नहीं जाएगा अगर आपको समझ क्लियर हो। सुसंस्कृति में तो आपकी सोच, आपकी एक्टिविटी, आपकी इंटरेक्शन, आपकी डिसीजन मेकिंग सब कुछ आता है। अगर एक लोकल पुलिस वाले आए, बोले हम लोग कैंप करते रहते हैं और आपको भी इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि जो यहां के पुलिस होती है उनको अलग अलग जगह से आए हुए, देश से आए हुए लोगों को समझ नहीं पाते कभी कभी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर का या रिलीजियस प्रॉब्लम है, वो तो है, इवन नॉर्मल बातचीत को भी समझना मुश्किल होता है। तो उसने एग्जाम्पल दिया, बोले आपके भारत से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पूछो वो अगर हां भी कर रहे होते हैं, यस 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 यस, नो 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 नो, तो हमें समझ में नहीं आता है वो नो कह रहा है या यस कह रहा है। तो इसीलिए हमें वो कल समझना पड़ेगा कि वो क्यों करते हैं ऐसा, यस बोलते हैं पर ऐसे करते हैं, तो जनरली यूनिवर्सल ये है कि भाई ऐसे करते हैं। तो ये सब क्या है, एक आदमी नहीं करता। जब कोई चीज कलेक्टिवली हो जाता है उसको आप कल्चर कह देते हो, जब इंडिविजुअल करता है तो वो मैटर नहीं करता। पर वही चीज जब बहुत सारे लोग करने लग जाते हैं फिर हम कहते हैं ये हमारा कल्चर है। फिर दूसरे कल्चर वाले को वो समझना पड़ता है कि उसके कल्चर में इसमें ऐसे कैसे बिहेव करते हैं। ऐसे उस पुलिस वाले ने बहुत सारे प्रॉब्लम बताए कि कैसे हमें छोटी छोटी चीजें बड़ा कंफ्यूज कर देता है। रास्ते में किसी को आपने पकड़ लिया, बट कहीं कोई क्राइम हुआ, मान लीजिए कोई इंडियन आदमी एविडेंस देने आया, कोर्ट में आया, उसको पूछो, उसके आंसर बोलता तो अंग्रेजी में पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस कभी कभी उसके अपोजिट दिखता है। इसलिए समझना पड़ता है कि कैसे आप लोग अननोइंगली आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो समझना जरूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, दूसरा बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, हमारे इंडियन लोगों में दूसरों को रेस्पेक्ट करने की ज्यादा भाव होता है, अननोइंगली आता है। कोई बड़ा ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी बड़ा नेता हो, तो हम अपने से बड़ा हो तो हम आंख झुका के बात कर रहे, आंख मिला के बात नहीं करते, बदतमीजी मानी जाती है। ये अभी भी ये बैड मैनर माना जाता है कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो आंखों में आंख मिला के। पुलिस ऑफिसर ने बोला पर हमें ट्रेनिंग मिलती है कि सामने वाला अगर आंखों में आंख मिला के बात नहीं करता इसका मतलब समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है, झूठ बोलता है। आंख में आंख मिला के बात करता है तो सच, पर हमारे यहां ये ट्रेनिंग है कि बड़ों से आंख मिला के बात करना बैड मैनर है। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये किसी ने बताया नहीं है, पर इस तरह के हमारे ट्रेडिशनली इस तरह हम बड़े। ये अच्छा एक संस्कृति है या बुरी संस्कृति है ये अलग बात, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम एक खास तरह के तरह की बातचीत करते हैं, खास तरह के विवेद करते हैं, दूसरा आदमी दूसरे तरह से करता है। जब आपको समझ में आता है एक अमेरिकन आदमी आपसे आंख मिला के बात करता है आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, एक इंडियन आदमी आंख नीचे झुका के बात करता है उसको चोर नहीं समझना चाहिए। ये जब आप समझते हैं तो दोनों कल्चर को जो समझते हैं नक्सीवर हम उनके अच्छाइयों को भी लेते हैं अपितु एक दूसरे को ज्यादा रेस्पेक्ट करना समझ पाते हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस व्हाट इंडिविजुअल्स ईट, व्हाट दे वेयर, व्हाट दे थिंक इज राइट और रॉन्ग एंड मच मोर। ऐसी हजारों चीजें हैं जो जिसको एज एन इंडियन हमें रॉन्ग लगता है, एक अमेरिकन होने के नाते वो सही है, उनके लिए जो सही है हमारे लिए वो गलत है। हमारे बच्चों की परवरिश की तरीका, मुझे एक यंग पेरेंट्स मिले, बातचीत में उन्होंने बताया उनकी यंग है, बहुत यंग है, अभी 30 35 के बीच में दोनों होंगे, उससे कम भी होंगे। तो बोले उनको डॉक्टर उनको पूछता है, जब भी बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं 2-3 साल का, कि आप इसको अलग सुला रहे हो या नहीं, कहते हाँ बोलते हैं डॉक्टर को, पर नहीं सुलाते, सुला पाते क्योंकि सोता नहीं, रोता है। इंडियन पेरेंट्स की है कि बच्चों को अपने बीच में सुलाते हैं, यहां बच्चा पैदा होते ही अलग दिन उसके लिए अलग रूम है, डॉक्टर समझ अगर पता लगे तो वो नाराज होता है, उसको बुरा लगता है। बहुत सारे देशों में तो आपको पता है, यूरोप के बहुत सारे देशों में ये इसी तरह इंडियन पेरेंट्स फंस जाते हैं और उनके बच्चे को उनकी सरकार छीन के ले जाता है। नरियो में केस हुआ, बड़े बवाल मचे, बंगाली पेरेंट्स थे और पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो उनको पता चला इनका बेटा 5-6 साल का बेटा इनके साथ सोता है, उसको उठा के ले गए। कल्चर को ना समझ, ऐसा नहीं है कि विषम पास सोने से कोई बुरा है, दूर सोने से कोई बुरा है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा अलग बात है। जो पास सुलाते हैं वो भी बच्चे को इंसान बना लेते हैं, जो दूर सुलाते हैं वो भी इंसान बना देते हैं, है ना। जो दही चावल सांभर खाता है उसके बच्चे भी अच्छे और इंसान बन जाते हैं, जो पराठा दही खाता है उसके बच्चे भी इंसान बन जाते हैं, दोनों अमेरिका में बड़े सक्सेसफुल है। तो आप किसको क्रिटिसाइज करते हो, है ना। एवरी कल्चर इज एनरिच्ड विथ सम गुड एंड बैड फीचर्स, वो समझना जरूरी है। वी सी द वर्ल्ड एंड रिएक्ट टू इट इन वेज दैट आवर कल्चर हैज टॉट अस टू सी एंड रिएक्ट। जिस तरह का हमारा आपका रिएक्शन होता है कोई चीज घटने पर, या जिस तरह के हम हमारे अंदर की भाव बनता है कोई चीज हम देखते सुनते हैं। अगर आप अफ्रीका में पैदा होते तो आपका रिएक्शन दूसरा होता, आप फ्रांस में पैदा होते आप दूसरी तरह से सोचते, आप चाइना में पैदा होते आपका सोच दूसरे टाइप का होता, आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपकी दूसरी तरह का सोच है, आप अमेरिका में पैदा होते वो भी अलग अलग राज्यों में पैदा होते तो भी थोड़ी बहुत माइंडसेट में डिफरेंस आ जाता है। टेक्सास वालों के अपनी सोच है, न्यूयॉर्क वालों के अपने टाइप की सोच है। हम जो कुछ भी हैं, आप पूछ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, हम सब असली बात है कि ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को डिफाइन, आप जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूं, मुझे क्यों लगता है कि ये खराब है ये अच्छा है। पर आप दूसरे कल्चर में पैदा होते फिर आपको दूसरा अच्छा लगता है, इसलिए यह समझना बड़ी जरूरी है कि हमारा सोच भी जो बनता है वो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड से बनता है। हाउएवर द वे यू परसीव द वर्ल्ड इज नॉट नेसेसरीली द वे अदर ग्रुप्स परसीव द वर्ल्ड। अगर आप में से कुछ लोग दर्शन शास्त्र पढ़े हो या पढ़ने के इंटरेस्ट रखते हो या पढ़ते हो फिलॉसफी, अगर आपको इंडियन फिलॉसफी आपने पढ़ा है, अब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़े 90% नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आता है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी के बैकग्राउंड वाले हैं, ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़े इंडियन फिलॉसफी 90% समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको फिर टीचर की जरूरत है एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल लगता है जैसे दो अलग अलग धाराएं हैं। आप पुराने प्लेटो को पढ़िए, अरिस्टोटल पढ़िए, बर्नार्ड रसल पढ़िए, जिनके भी आपको वेस्टर्न फिलॉसफर आप जानते हैं। आप भारत के पढ़िए, पतंजलि को पढ़िए, जैमिनी को पढ़िए, व्यास को पढ़िए, अगर ये बहुत पुराने लग रहे हैं तो राधाकृष्णन को पढ़िए, और बहुत सारे दार्शनिक हैं उनके विचारों को पढ़िए। अगर आप वेस्टर्न बैकग्राउंड के हैं, बहुत सारे इंडियन बच्चों को हम देखते हैं, अब पैदा तो गलती से इंडिया में हुए, वो गलती से इसीलिए कहना पड़ता है, पढ़ाई वो इंडिया में ही पढ़ते हैं, पर उनके मुंह से जो भी निकलता है वो वेस्टर्न ही निकलता है। भारत के कॉलेजों में ही पढ़ते हैं, भारत में ही पैदा हुए हैं, ये भारत के दुर्भाग्य है। आप भारत के किसी भी फिलोसफी डिपार्टमेंट में जाए, यूनिवर्सिटियों में किसी भी फिलोसफी पढ़ने वाले रिसर्च करने वाले प्रोफेसर से बात करो, उसको ये नहीं पता जैमिनी कौन है, पतंजलि कौन है, गौतम कौन है, बुद्ध कौन, ये सब नहीं पता उसको। ये तो पता बर्ट्रंड रसेल कौन है, फ्रायड कौन है, प्लेटो कौन है, हजारों का पता है, वो नहीं पता। इसलिए जब वो आर्ग्यूमेंट करने लगता है हमें समझ में नहीं आता है कि उसका पॉइंट क्या है, और जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं उसको ये नहीं समझ में आता है कि पॉइंट क्या, कोई किसी को समझता ही नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग धरातल पर बने हुए दर्शन है। इसीलिए आपको समझना है तो फिर दूसरे की बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, उनकी फिलॉसफी क्यों पैदा हुई और उसकी बैकग्राउंड क्या था, भारत की फिलॉसफी क्यों पैदा हुआ उसका बैकग्राउंड क्या था। हमारे फिलॉसफी तब पैदा हुए जब हम खाते पीते घर के होते थे, हमें खाने पीने की चिंता नहीं थी, रोटी दाल की चिंता नहीं थी, कपड़े की चिंता नहीं थी, खूब था, और खूब था ना था हमें बहुत कुछ की जरूरत नहीं थी, थोड़े में संतुष्ट थे और वो थोड़ा बहुत नेचुरली हमें बहुत मिल जाता था, तो खूब हमारे यहां नदियां हैं, हरी भरी जगह है, प्लेन जमीन है, और फिर हमने दुनियादारी से ज्यादा हमने खुद को ढूंढने में टाइम बिताया। वेस्टर्न फिलॉसफी बनी जहां रोटी के एक एक दाने के लिए तरसने की पड़ती थी, ठंड का मौसम है, चारों हर जगह बर्फीला बर्फीला, मुश्किल से खेती होती है, पहाड़ी जमीन, और भी बहुत सारी समस्याएं, काफी मेहनत करना पड़ता है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो जिंदगी को जीने के लिए संघर्ष से पैदा हुआ उनका फिलॉसफी। हमारे यहां जिंदगी तो चलती थी, आज गरीबी आने लगी भारत में, और जिंदगी को समझने की इच्छा बनी, ठीक उल्टा आज देखेंगे। आज भारत में कोई भी पढ़ता है ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही सब्जेक्ट चलते जिससे पैसा मिले। आपको पता है 20 साल से भारत में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लैंग्वेज तो छोड़िए, संस्कृत हिंदी तो पढ़ने वाले कम हुए, बेसिक साइंस में अब स्टूडेंट्स कम मिलते हैं, जो नॉर्मली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो बेसिक साइंस है, बच्चे नहीं मिलते हैं, अब अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं, सबको एमबीए करना है, कॉमर्स करना है, जहां कंप्यूटर साइंस करना है, क्योंकि गरीबी का देश है, ज्यादा से ज्यादा कोई मिडिल क्लास है, पैसा कमाना लाइफ में जरूरी है, वही पढ़ना जिससे पैसा मिले। आज भारत से ज्यादा यूरोप और अमेरिका में संस्कृत लोग पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा आपके हिंदू धर्म को यहां के लोग समझते हैं, यहां के हार्वर्ड से लेकर एलए से लेकर सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में वो हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, उसका वो अलग बात है कि वो किस तरह प्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं सब। तो कभी कभी हमारे लोगों को लगता है जब भारत में लोगों को बताते हैं कि देखो वहां लोग पढ़ते हैं हिंदू धर्म के बारे में, पढ़ते हैं हिंदू दर्शन, पढ़ते हैं संस्कृत, पढ़ते हैं कितने एक्सपर्ट, उनको लगता है वो सब ये क्यों पढ़ते हैं, उससे क्या मिलता है उनको, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को बोलते ये सब क्यों पढ़ोगे, इसे तो क्या करोगे, क्योंकि इनको कमाने में मुश्किल नहीं है, इनके पैसे कमाने के हजारों रास्ते हैं, ये पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअली सेटिस्फेक्शन के लिए। हमारे यहां आज भारत में इंटेलेक्चुअली सेटिस्फेक्शन बड़ा चीज नहीं है, बुद्धि को संतुष्ट करना, पेट को संतुष्ट करना, ईगो को सेटिस्फाई करना और पेट को सेटिस्फाई करना, यह बड़ी बात है। अभी हम पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं 15-20 साल से, तो हम कैसे छूट जाएं, ये प्रॉब्लम है। हमारा दर्शन शुरू हुआ जब हम भरे पेट थे, तो हमें ये यूनिवर्स को समझने की इच्छा थी, अंदर को समझने की इच्छा थी, दुनिया को, उनका दर्शन शुरू हुआ, इसीलिए वेस्टर्न फिलोसफी के बेस पर सोशलिज्म पैदा हुआ, कैपिटलिज्म पैदा हुआ, कम्युनिज्म पैदा हुआ, सब इज्म पैदा होने लगे और वो सारे इज्म पॉलिटिकल थे। भारत में दर्शन के आधार पर वाद पैदा हुए, अद्वैतवाद, त्रैतवाद, द्वैतवाद, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, खाए पिए बैठे तो चले क्या करना। However, the way you perceive the world is not necessarily the way other groups perceive the world. इसीलिए सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, क्योंकि बैकग्राउंड अलग अलग है, अलग अलग टाइप का फिलोसफी है, तो समझ अलग होता है। थोड़ी थोड़ी भारत की संस्कृति को देखें। द कल्चर ऑफ इंडिया हैज बीन शेप्ड बाय इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। हमारी संस्कृति, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, मेरे खुद का उदाहरण, उस व्यक्ति को, बुजुर्ग आदमी को जवाब देने के लिए, हम जो भारतीय लोग संस्कृति के नाम लेकर के गुणगान करते हैं या लोगों को टोकते हैं, ताकते हैं, अब तो सरकार भी ऐसी आ गई कि अच्छी भी लगती है, बुरी भी, डर भी लगता है। वो अच्छी लगती है तो अपनी सरकार है, कुछ अपने ही काम करेंगे, डर इसलिए लगता है कि वो अपने नाम पर ऐसे ऐसे थोपने लग जाते हैं कि डर लगता है कभी हम आजादी से बोल पाएंगे कि ना रख पाएंगे कि नहीं, अपनी संस्कृति को निभा पाएंगे नहीं। क्योंकि फिर संस्कृति को जो डेफिनेशन आज लोग करने लग गए हैं वो खतरनाक है। 200 साल का, 400 साल का, 500 साल की संस्कृति को संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति ही है तो वेद क्या अंग्रेजों की थी, उपनिषद क्या जापानियों का था, धर्मशास्त्र क्या क्रिश्चियनों का है, उसकी बात तो करते नहीं हो। घुमा फिरा के हनुमान चालीसा रामचरित मानस पर टिक के खत्म हो जाता है, 500 साल पहले लिखी गई किताब पर है? जब पैंट पहनने वाले को तुम कहते हो कि इंडियन नहीं है, कुर्ता पायजामा वाले कब इंडियन हो गए, तो अरबियन है। समझने की जरूरत है हमें भी, आपको भी, ये कुर्ता पायजामा अरब कल्चर का है। तो आप जब भारत को 10,000 साल के इतिहास में देखोगे तो आप एक दूसरे तरह के इंसान बनोगे। अगर 500 साल के इतिहास में देखोगे तो आपका पर्सनालिटी एक दूसरे कल्चर का वाला बनेगा। इसलिए आप गर्व कर सकते हैं, आप दुनिया में सबसे पुराने संस्कृति के वाहक हैं। काफी चेंजेस आए हैं, तो इट्स ए लॉन्ग हिस्ट्री, यूनिक। हमारी ज्योग्राफी अलग टाइप की है, वेस्ट की से बिल्कुल अलग टाइप की ज्योग्राफी हमारी है। हमारे जो डाइवर्स डेमोग्राफिक्स हैं, हमारे जो कस्टम को, हमारे संस्कृति के अंदर जो कस्टम धीरे 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 अब्सॉर्ब्ड हो चुके हैं, फैमिली ट्रेडिशन से लेकर के अपने कम्युनिटी कलेक्टिव ट्रेडिशंस कैसे संस्कृति के नाम पर आ चुके हैं, ट्रेडिशंस, अलग अलग आइडियाज, ये सब मिला के ये भारतीय संस्कृति बनी। और आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृति में से एक तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पुरानी संस्कृति, जिन संस्कृतियों को हम कहते हैं, आज वो संस्कृति जिंदा नहीं है, वो सिर्फ पुरातत्व संग्रहालय में है, वो आज सिर्फ वो म्यूजियम में मिलते हैं। वो इजिप्ट की संस्कृति हो, ग्रीक की कल्चर हो, यूनान की कल्चर हो, मिस्र की कल्चर हो, मेसोपोटामिया की कल्चर हो, जिनके साथ हमें कहना पड़ता है कि वन ऑफ देम, पर वो सब कल्चर आप सिर्फ म्यूजियम में मिलते हैं, अखबार में, बुक्स में मिलते हैं, जिंदा नहीं दिखते हैं। आप कह सकते हैं हम सब इतने बिगड़ने के बावजूद भी हमारे अंदर हमें देख करके आप 10,000 साल की संस्कृति की झलक ले सकते हो, अभी भी उसकी जिंदापन है आपकी उस 10,000 साल की संस्कृति। इसीलिए ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है जो आज भी जीवित है। चेंजेस काफी हो चुके हैं, काफी सारे डिस्टॉर्शन भी हो चुका है, पर अभी भी उसका ओरिजिनल फॉर्म कहीं ना कहीं झलक आपको दिख जाएगा। पर आपको इजिप्ट में मिस्र कल्चर नहीं दिखेगा आज, सिवाय पिरामिड के। आपको ग्रीक में टूटे हुए खंडहरों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, कोई कल्चर नहीं दिखेगा। वो भारत में आज आपको दिख जाएगा, लोगों में, लोगों के खान पान में, लोगों के नाचने में, लोगों के गाने में, लोगों की सोच में, वो 10,000 साल की संस्कृति दिखेगी। कुछ नहीं दिखेगी तो वो भाषा, वो लिटरेचर, आज भी लाखों करोड़ों लोग उस भाषा को पढ़ते हैं, उस लिटरेचर को समझते हैं, समझानते हैं। और आप चाहे अगर इसको डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं, आज जो इंडियन कल्चर है ये कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव कल्चर है, ये कोई बुरा या अच्छा नहीं है। यहां तो रिपब्लिकन प्राउडली कहते हैं वी आर कंजर्वेटिव, तो डोंट फील दैट कंजर्वेटिव मतलब समथिंग बैड, नो, इसकी अपनी समझ है। वेस्टर्न कल्चर को देखिए, द वेस्टर्न कल्चर हैज गॉन थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन assuming different philosophies and civilization throughout the ages. Although Western culture was not a, is not a, has not a great the long history, मुश्किल से, क्योंकि जो Western culture की लंबी history क्यों नहीं है, क्योंकि West में, West का मतलब वो हम सिर्फ Europe और Europe की culture जहां आए, जबकि America West में नहीं है, पर क्योंकि ओवरऑल यूरोपियन कल्चर का आज के तारीख में सबसे बड़ा झंडा तैराने वाला अमेरिका है, तो पार्ट ऑफ द दैट, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या अमेरिका हो, ये सारे वेस्टर्न कल्चर में डेफिनेशन में आ जाते हैं। इनकी कल्चर बहुत पुरानी क्यों नहीं है, सिविलाइजेशन पुरानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतनी बार वहां बर्बादी हुई। जिस वेस्टर्न कल्चर को आज आप देखते हो, वो 1,500 साल पहले बिल्कुल अलग था, उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो यूरोप काफी बार बसा, काफी बार उजड़ा, लोगों को जबरदस्ती एक दूसरे कल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया, रिलीजियसली, कल्चरली, सब चीजों में। जो रिवोल्यूशन मूवमेंट चला 16th सेंचुरी में, 15वीं सेंचुरी से लेकर आज तक, उसके कारण जो आज का वेस्टर्न कल्चर है उसका कोई लेन देन नहीं है आज से 1,000 साल पहले की, 2,000 साल पहले की। इसीलिए जिसको आज हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं वो एक मॉडर्न कल्चर है, जिसके अपने फिलोसफीज हैं, जिसकी अपनी हिस्ट्री है, पर वो बहुत पुरानी नहीं है, और उसमें काफी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, काफी चेंजेस होते गए। और इसका जो बेसिक फाउंडेशन है, जिस इंडियन कल्चर का जो बेसिक फाउंडेशन है वो है स्पिरिचुअलिज्म। अल्दो आज हम काफी काफी ज्यादा हिपोक्रेट हो चुके हैं, पर हिपोक्रेसी पर उसकी, तब भी इसके जो फाउंडेशन है इंडियन कल्चर की, वो स्पिरिचुअलिज्म है। और जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर जिसको हम कहते हैं, जो मॉडर्न रूप में दिखता है, उसका बेसिक है मैटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। एक दोबारा कहता हूं, ये बुरा या अच्छे की बात नहीं है, इट हैज सेवरल कोर आइडियल्स एंड वैल्यूज। जब आप इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं तो आपकी वैल्यूज दूसरे हो जाते हैं, जिसमें आपको डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल की, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिवनेस से ज्यादा इंपोर्टेंस इंडिविजुअल का होना चाहिए, फैमिली से ज्यादा इंपोर्टेंस फैमिली मेंबर को होना चाहिए, सोसाइटी से ज्यादा इंपोर्टेंस पर्सन को होना चाहिए। यही डिफरेंस है भारत के और उसमें। भारत की कल्चर क्या है, व्यक्ति से ज्यादा सोसाइटी को इंपोर्टेंस मिलता है, मेंबर से ज्यादा फैमिली की भलाई देखी जाती है, सोची जाती थी। इसी तरह उनके लिए, वेस्ट के लिए जो छोटी छोटी खुशियां हैं ये बड़ी बात है, हमारे लिए था कि अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना अच्छी बात है, बड़े खुशी के लिए या कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए। इसीलिए हमारे यहां त्याग करने वालों को हम भगवान मानते हैं, त्याग करने वालों को हम साधु संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं। सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट हम साधु संन्यासियों को देते हैं। क्यों देते हैं? सिर्फ एक ही क्वालिटी के कारण कि उन्होंने घर परिवार नहीं बसाया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। अल्दो मोस्ट ऑफ देम आर बिकमिंग हिपोक्रेट, पर हमारे अंदर वो सम्मान है वो त्याग के प्रति, कि आप इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत सुख के बदले आप समाज का सुख चाहा, अपनी चुना, यही लोगों के अंदर उसके प्रति सम्मान देते, वो करता है नहीं करता है वो अलग बात है, आजकल सोसाइटी तो बिगड़ रही है वो अलग बात है, पर ये हमारा कोर वैल्यू में आता है। त्याग करने वाला महान है, वेस्ट में त्याग करने वाले को महान नहीं एक बेवकूफ माना जाता है। हर इंडिविजुअल को आगे बढ़ना चाहिए, सोसाइटी इंडिविजुअल से बनता है, सोसाइटी से इंडिविजुअल नहीं बनता, तो दो अलग अलग कंसेप्ट है। इसीलिए राइट्स यहां ज्यादा आता है, हमारे यहां हर बच्चे को सिखाया जाता था, आज भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। किसी भी बच्चे को भारत में नहीं सिखाया जाता है तुम्हारा राइट क्या है। इवन यहां आने पर भी हम अपने बच्चों को बहुत कम सिखाते हैं व्हाट्स योर राइट, हम उनको सिखाते हैं माँ बाप को रेस्पेक्ट करो, उसको रेस्पेक्ट करो, ये करो वो करो, कभी ये नहीं कहते कि ये तुम्हारा राइट है। पर वेस्टर्न कल्चर में बच्चे को जो पहले सिखाया जाता है वो ये नहीं कि किसको रेस्पेक्ट करना, ये तुम्हारी राइट क्या है, वो राइट्स का कंसेप्ट आया। अगेन ये दोनों कल्चर में जो अच्छा ये है वो ले जाए तो व्यक्ति महान बनता है, ये हमारी कमी है। हम अपने बच्चों से रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सिखाते जाते हैं पर राइट्स नहीं सिखाते, और इसी कारण बच्चे हिपोक्रेट बनते या घर में परिवार में संघर्ष चलता है, कैपिटलिज्म साइंस टेक्नोलॉजी तराने लगे। बोथ कल्चर्स आर यूनिक, दोनों कल्चर में कुछ यूनिकनेस है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसीलिए जब आपको यहां के लोकल लोग देखते हैं तो उनको थोड़े समझ में नहीं आता है, जब हम उनको हमें तो समझ में इसीलिए जाता है कि हम अमेरिका ना भी आए तो भी भारत में बैठे बैठे उनके बारे में सब जानते हैं। जब मैं नया नया अमेरिका आया तो लोग पूछते थे तो यहां अमेरिका आने के बाद आपको कैसे लगा, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा, समझ में आता था ऐसा क्यों पूछते हैं, ऐसा क्या चीज मैंने यहां देखा जो मैं नहीं जानता था भारत में बैठ के। आपको पता है यह आजकल इलेक्शन चल रहा है, मुझे नहीं पता अमेरिका के लोग कितने यहां के बारे में जानते हैं, इंडिया के लोग आपसे ज्यादा बेटर जानते होंगे। आज ट्रंप कितने राज्य जीत चुके हैं, क्रूज कितने जगह हार चुके हैं, इंडिया मीडिया इंडियन मीडिया में वहां के न्यूज जितना चलता है अमेरिका में न्यूज, अमेरिका के न्यूज भी कभी कभी इंडियन न्यूज लगाओ तो तब पता लगता है कि अमेरिका में कहां क्या हुआ, तो सीएनएन फॉक्स न्यूज वो बाद में पता लगता है तो वहां पहले लगता है। तो यहां कोई खांसे तो इंडिया में न्यूज बनती है, तो हमें तो ज्यादा पता है क्योंकि हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं एज एन इंडियन जो इंडिया में रहते हैं, और अमेरिका को खाली हमने ही मेरे ख्याल से भारत दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका को माई बाप समझते हैं, तो इसीलिए उसके हर छोटी छोटी चीजों को जानते हैं। वो तो हम, मैं जब 12-13 साल के था तब भी मैं जानता था कि यहां के गायों से मशीन से दूध निकाला जाता है, पर किसी अमेरिकन पढ़े लिखे आदमी को भी नहीं पता होगा कि भारत की गाय कैसे दुहे जाते हैं, तो इनको पता नहीं होता। जो जो हमें देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है तुम क्या करते हो, ऐसे क्यों पहनते हो, ऐसे क्यों खाते हो, पर हम लोगों को भारत में रहकर भी सब पता रहता है, तो हम इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। पर उनको इसीलिए उनको समझना पड़ता है हमारे साथ, बोथ ऑफ गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज। जो पॉइंट एक कह के बात रखेंगे नेक्स्ट टाइम, इसकी अगले कुछ बात रखेंगे। तो दोनों में जो अच्छाइयां है वो अगर एक समझदार व्यक्ति कौन है जो किसी भी कल्चर से कल्चर की अच्छाइयां ले जाता है, अपनी बुराइयों को छोड़ देता है ना। और मुझे अमेरिकन लोग ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, क्यों पता है, आपकी योगा ले गए है ना, वो खुद बिजनेस करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है अमेरिकन को योगा से। अब तो ये योगा को अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे योगा इंडिया से ये भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है उसको भी हटा रहे हैं, अब उन्होंने पैदा कर दिया क्रिश्चियन योगा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाने लगा है। वो आपकी कल्चर को जो जो अच्छी चीजें लिया, खाली आज नहीं लिया, 2000 साल से आपकी हजारों चीजें ले चुके हैं, आपकी जीरो ले चुके हैं, आपकी मैथमेटिक्स ले चुके हैं, आपकी ज्योमेट्री लिया, आपकी ट्रिकोनमेट्री लिया, और लिया नहीं कि सिर्फ लेकर के आपकी चीजें लेकर के आपसे खरीद के लिया, इन्होंने लिया और उसको फिर और डेवलप किया अपने नाम से बेचा। और हम भी लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम सिर्फ उनके बनी बनाई रेडीमेड चीजें लेते हैं, हम लाइफ लॉन्ग उनके कंज्यूमर हैं। और वेस्टर्न कल्चर की है वो किसी के भी कंज्यूमर ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, वो खुद मेकर बन जाते हैं। ये सीखना चाहिए उनसे, उनकी संस्कृति से। हम अपने बच्चों को समझाते हैं अमेरिकन बन जाओ क्या अमेरिकन बन जाओ, ये तो नहीं सिखा पाए कि भाई पंक्चुअल बन जाओ, टाइम पर आओ, ये नहीं सिखा पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, ये नहीं समझा पाए। रिस्पेक्ट करना, ये नहीं सिखा पाए। हम ये सिखा दिया कि रात को 3 बजे तक नहीं सोना, नाइट क्लब में डांस करना वगैरह वगैरह। वो हमसे वो सब ले, इसीलिए स्मार्टनेस जरूरी होता है। नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे इन सब चीजों पर, क्या हमारे और उनके डिफरेंशिएशन है, फैमिली, ओल्ड एज लाइफ, इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेसी, ये भारत और अमेरिका वेस्टर्न कल्चर में क्या अंतर है, और कहां हमें उनसे सीखना है और कहां हमसे उनको सीखने की जरूरत नहीं, वो सीख चुके हैं, और कहां हमें एक्चुअली सीखने की जरूरत है। तो जो सीख लेता है, दोनों को सीख लेता है, वो फिर स्मार्ट होता है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। नेक्स्ट टाइम बाकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।